प्रिय भक्तजन, आज 19 अगस्त 2024 का शुभ दिवस आप सबके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। और श्रीमद् भगवत गीता का जो अध्याय हम करते हैं, उससे आपको आध्यात्मिक लाभ हो, शक्ति मिले, आत्मा को पहचाने, परमात्मा से जोड़े। हमने गीता अध्याय में श्लोक 16 अहम क्रतु अहम विद्या स्वधा हम औषधम मंत्रो हम अहमेवाज्य हम अग्नि अहम हुतम पिता हमस्या जंतो माता धाता पिता महा वेद्यम पवित्र ओंकारा एक सुनिवेव च यते भक्ता प्रभु साक्षी निवासा शरण सुहित प्रभुवा पल्या स्थानम ध्यानम मेलम अभ्यम 16, 17, 18 तीनों श्लोक इकट्ठे हैं। कृतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, हित मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकारिक वेद साम वेद यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। संपूर्ण जगत का पिता धाता माता पिता मैं गति भक्ता प्रभु साक्षी निवास आश्रय सहित उत्पत्ति प्रलय स्थान निधान तथा विनाशी बीज भी मैं हूँ। इसे भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें बताते हैं कि जो कुछ भी है मैं हूँ। पिछले श्लोकों में हमने जाना कि भगवान कहते हैं मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। जब तक हमें सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं होती, अंतिम रूप से हम भक्त नहीं बनते, तब तक हमें वो संसार और भगवान दो दिखाई देते हैं। लेकिन भक्ति ये मिलते ही हमें सब कुछ भगवत में ही दिखाई देता है। अगला श्लोक है इसमें तपा महम महम दर्शन निग्रह हूँ सजामि च अमितम चैव नित्यश्चित सद सच्चाहम अर्जुना। यह अर्जुन संसार के हित के लिए मैं ही स्वयं रूप से तपता हूँ, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उस जल को मैं ही वर्षा रूप से बरसा देता हूँ। और तो क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु सत और सत भी मैं ही हूँ। देखिए मृत्यु को भी भगवान ने कहा मैं ही, लेकिन मृत्यु के समय मनुष्य बहुत ही दुखी हो जाता है, यहाँ तक कि भगवान को भूल जाता है। कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं, जैसे कई बार विद्यार्थी छात्राएं छात्र फेल हो जाते थे तो वो भगवान को भी गाली देने लगते थे, कहते थे क्या है विश्वास ही उठ गया हमारा। तो मृत्यु के समय तो कई लोग इतने दुखी होते हैं कि भगवान है ही, भगवान होता तो ऐसा नहीं होता, नहीं नहीं भगवान है पक्का है, ये हमारे अपने कर्म है जिसमें हमें सुख और दुख मिलता रहता है। लेकिन सुख में हमें तराना नहीं है, दुख में हमें दुख नहीं होना है, हमें विद पावर को अच्छा शक्ति को सुदृढ़ बनाते हुए अपना यह मानवीय जीवन व्यतीत करना है। जो देखने सुनने पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है और जिन शरीर इंद्रियां मन बुद्धि हम के द्वारा देखा सुना पढ़ा सोचा जाता है वह सब का सब असत अपरा प्रकृति है। परंतु जो देखता सुनता पढ़ता सोचता जानता मानता वह सत परा प्रकृति है। हमने पहले अपरा और परा प्रकृति के विषय में जाना था। अपरा तो इस संसार से संबंधित है और परा अलौकिक है। भगवान कहते हैं कि सत भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ। चल भगवान यहाँ क्वेश्चन पर कहते हैं कि भगवान सज्जन में भी है, सज्जन भगवान और लुच्चा भगवान। जो अपने भक्तों को बताते हैं सत्संग में कि लुच्चा भी भगवान है तो सभी भक्त बड़े चिड़खड़ा के हंसते हैं कि लुच्चा कैसे भगवान हो सकता है। यह भगवान ओमनीप्रेजेंट है, सर्वव्यापक है, तो अच्छे और बुरे में वो भगवान निश्चय है। लेकिन जो अच्छा है वो अच्छी कमाई करके जाता है, जो लुच्चा है वो वैसी घटिया कर्मों में व्यस्त रहता है। जैसे हम कूद के प्रसाद में रसगुल्ले भी होते हैं, गुलाब जामुन भी होते हैं और मेथी की रोटी भी होती है, करेले भी होते हैं, प्रसाद भी होता है और मीठा भी भगवान का प्रसाद है और कड़वा भी। इसलिए हमें सुख और दुख को भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण करना चाहिए। अमित भी भगवान है और नित्य भी। सोया रूप से जल को ग्रहण करना, फिर उसे बरसा देना, ग्रहण और त्याग भी भगवान ही करते हैं। सदा सच्चा हूँ, सत्व सत्व मैं हूँ, इसमें विवेक नहीं है, प्रतीत विश्वास है। विश्वास विवेक से भी तेज होता है, कारण की विवेक नहीं काम करता है जहाँ सत्य और असत दोनों का विचार होता है। विवेक का काम कहाँ है, जब हमारे पास दो आ जाते हैं, ये ठीक है कि ये ठीक है, तब हमारा विवेक जो है पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन काम आती है। जहाँ सत्य और असत दोनों का विचार होता है, जब असत है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करे। कहते हैं जो भक्त है उसके लिए तो सब कुछ आराम में सब जग जाने, वासुदेव सहमति। यहाँ वासुदेव ही वासुदेव है, भगवान ही भगवान है, और कुछ है ही नहीं कि विवाह किसका होगा, सात किसके होंगे, अर्थात भगवान ही भगवान है, ऐसा विश्वास करना चाहिए। ज्ञान मार्ग में सत असत करने झूठ होंगे, इसमें व्यर्थ है, दो बंदे ना, एक सत्य एक झूठ है। मार्ग में एक भगवान ही विश्वास मुख्य होने से इसमें अद्वैत है, भक्ति मार्ग में अद्वैत है, क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान ही भगवान है ना। जहाँ स्थिति आ जाती है महात्माओं की, जो उनको दुख देते हैं, जो उनके घर आकर उनको सताते हैं या चोरी कर जो भी गलत कार्य करते हैं, तो महात्मा लोग कहते हैं ना जाने किस रूप में भगवान आ गए हैं, है ना, उनको दो नहीं दिखाई देते। ज्ञान मार्ग में साधक असत का निषेध करता है, निषेध करने से असत की सत्ता का भाव बहुत समय तक बना रह सकता है। साधक असत के निषेध पर जितना जोर लगाता है उतना ही असत की सत्ता का भाव दृढ़ होता है। हम जिस चीज को छोड़ना चाहते हैं ना, वो और ज्यादा हमारे हृदय में प्रभाव डालती है और जम जाती है, दृढ़ हो जाती है। इसलिए हमें असत के विषय में सोचना नहीं है। असत का निषेध करना उतना बढ़िया नहीं है जितना उसकी उपेक्षा करना बढ़िया है। असत की उपेक्षा करनी चाहिए। आप उपेक्षा करने की अपेक्षा भी सब कुछ परमात्मा ही है, ये भाव और भी बढ़िया है। उपेक्षा में तो ये होगा ना कि हम बार बार सोचेंगे ये ठीक है, ये गलत है, चल गलत को छोड़ो, इसकी उपेक्षा करो। लेकिन जब हमारे मन में ये भाव ही नहीं आएगा, ना सत्य है ना असत्य है, इसका दो नहीं करना कि उन्हें सत्य सत्य है, तो हमें सब जगह भगवान ही दिखता है। अपने सहित संसार में जो कुछ दिखता है यह भगवान का स्वरूप है। अपने को देखो, अपने भाई को देखो, जिसको भी देखो उसके बीच भगवान के दर्शन करो। इसमें जो कही है दिख रही है भगवान की लीला है, भगवान और उनकी लीला के सिवाय कुछ नहीं है। तभी तो हमने देखा ना कि भगवान को क्या कहते हैं, भगवान ने तेल लीला धन्य तेल लीला, लीला कहते हैं वो। लीला के सिवाय कुछ है ही नहीं। कोई जन्म गया, कोई मर गया, किसी का विवाह हो गया, किसी के बेटा हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई स्वस्थ हो गया, किसी का आदर हो गया, किसी का निरादर हो गया, किसी को नफा हो गया, किसी को घाटा लग गया, कोई धनवान हो गया, कोई निर्धन हो गया। हमें ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि ये सब के सब भगवान की लीला है। इसमें हमें व्यर्थ नहीं देखना चाहिए कि भगवान किसी को दुख देता है, किसी को सुख देता है, ऐसी बात नहीं, ये लीला है। अपने अपने कर्म अनुसार मनुष्य भोग भोगता है, सर्ग प्रलय भी उनकी लीला है। मतलब सृष्टि का बनना सर्ग है और प्रलय सृष्टि का विनाश है। महासर्ग महाप्रलय जब 70 बार ये चारों युग व्यतीत होते हैं तब महासर्ग और महाप्रलय होता है। वे कभी सत्यों की लीला करते हैं और कभी देवता युग की लीला करते हैं, कभी द्वापर युग की लीला करते हैं और कभी कलयुग की लीला करते हैं। इस प्रकार भगवान और उनकी लीला को देख देखकर साधक को सदा आनंदित रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि कितना भी दुख आ जाए उस दुख को अपने मन में नहीं लेना चाहिए, और ना किसी से वो दुख बांटना चाहिए, ताकि कोई दूसरा भी असत की ओर ना चला जाए। सत्य सत्य है, दुख भी तो सत्य है, भगवान है। विष्णु श्लोक है, विद्यमान सोमपा पुत पापा यदि विश्वास स्वर्ग गति प्रार्थियंते ते पुण्य साध्यम स्वर्ग लोक अशंति दिव्यांग जीवी देव भगवान। तीनों वेदों में किए हुए इस काम अनुष्ठान को करने वाले और सोमरस को पीने वाले जो पाप मनुष्य योगियों के द्वारा मेरा पूजन करके स्वर्ग की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्यों के फल स्वरूप पवित्र इंद्र लोक को प्राप्त करके महा स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। ये कर्म कांड आ गया, वेदों में कर्म कांड का जो अनुष्ठान है मनुष्य इन अनुष्ठानों को करता है तो वो स्वर्ग लोक में जाता है और स्वर्ग में देवताओं के भोग भोगता है। यहाँ ऐसे मनुष्यों का वर्णन है जिनके भीतर संसार की सत्ता में मैटा बैठी हुई है, जो कहते हैं मेरे पास अपना धन है, संसार ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, जो भगवान की अवधि पूर्वक उपासना करते हैं, अविधि पूर्वक मतलब विधि पूर्वक नहीं करते हैं। ऐसे मनुष्यों की उपासना का फल नाशवान ही होता है। अब मैं आपको विस्मय श्लोक तेतम भूत्वा सर्वलोकम विशालम क्षीण पुण्यम त्रिलोकम दिशन्ति कई धर्म एवं कई धर्म मनोपन्ना गतागतम काम कामान लगते दे उस विशाल सर्वलोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। यहाँ भगवान क्या बताते हैं, जो सकामी है काम कर्म करते हैं, कर्म गान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, ध्यान भी लगाते हैं, लेकिन मन में इच्छा रहती है, वो क्या होता है स्वर्ग लोक में चले जाते हैं, फिर स्वर्ग लोक से वापस मृत्यु लोक में उनको आना ही पड़ता है, जब उनके वो कर्म उनका फल खत्म हो जाता है। इस प्रकार तीनों वेदों में के मुस्काम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागम को प्राप्त होते हैं। काम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य के जब स्वर्ग के प्रतिबंधित पाप नष्ट हो जाते हैं तब वे स्वर्ग में चले जाते हैं। स्वर्ग का सुख भोगते भोगते जब उनके स्वर्ग के प्रापक पुण्य नष्ट हो जाते हैं तब वे पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य अवागम को प्राप्त होता है, संसार चक्र में घूमता रहता है। श्लोक 22 अनन्य अस्तिंतो यंतो माम ये जना परिपास्ते तेषा नित्य हरि युक्तानं योग क्षेम वहम हूँ। अब बताते हैं कि अनन्य भक्त के विषय में, जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए भक्तों का योग से अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं बहन करता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है, भगवान ने आश्वासन दिया है भक्त को, जो अनन्य भक्त है जिसका मरना धन में है, ना किसी अपने रिश्तेदारी में है, ना कोई मोह है, ना कहीं कोई चिंता है, लेकिन क्या है निरंतर भगवान की ओर जिसका ध्यान लगा हुआ है उसका योग क्षीम मैं बहन करता हूँ। तो योग क्या है, जो अभी तक मुझे नहीं मिला है वो मिलना है, वो मुझे मिलता है, वो भगवान का कृपा है। जैसे महाराज जी ने मुझे कहा, स्वामी जी ने माँ जब जिस आदमी की आवश्यकता या वस्तु की आवश्यकता होगी तो वह स्वयं अपने आप आपके सामने आ जाएगा, ये हो गया योग। और क्षेम क्या है, जो मेरे पास है उसकी रक्षा मैं करता हूँ। समझ गए होंगे आप कि जो हमारे पास नहीं है वो मिल जाता है, और जो कुछ है उसकी रक्षा करने का भार भी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। भगवान के अनन्य भक्त ना तो पूर्व श्लोक में वर्णित इंद्र को मानते हैं, न अगले श्लोक में वर्णित अन्य देवताओं को। जो अनन्य भक्त है ना उसको देवता की आवश्यकता नहीं, इंद्र आदि की उपासना करने वालों को नाशवान फल मिलता है, पर भगवान की उपासना करने वालों को अविनाशी फल मिलता है। देवताओं का उपासक तो नौकर की तरह है और भगवान का उपासक घर के सदस्य की तरह है। नौकर काम करता है तो उसे काम के अनुसार सीमित पैसे भी मिलते हैं, पर घर का सदस्य काम करे अथवा ना करे सब कुछ उसी का होता है। बालक क्या काम करता है, भगवान भक्त को उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री प्राप्त करते हैं, वो प्राप्त सामग्री की रक्षा भी करते हैं। यही भगवान का योग क्षेम बहन करना है। यद्यपि भगवान सभी साधकों का योग क्षेम बहन करते हैं, तथापि अपने अनन्य भक्तों का योग क्षेम वे विशेष रूप से बहन करते हैं। ऐसे प्यारे बच्चे का पालन आश्रम करती है, लोगों से नहीं करवाती। ये अनन्य भक्त या अनन्य भक्ति के विषय में हमें श्लोक 22 अध्याय में जानकारी मिलती है। श्लोक 23, ये अपन्य देवता भक्ता ये जनते श्रद्धान्विता ते अपनी माम कौंतया जनता विधि पूर्वकम। हे कुंती नंदन, जो भी वर्तमान श्याम श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं।
देखा ये देवतावाद आया,
हम देखते हैं कुल्लू में तो देवतावाद बहुत ज्यादा है। देवता प्रत्येक गाँव में देवता और घर में देवता। भगवान कहते हैं देवताओं का पूजन भी मेरा ही पूजन है, लेकिन बात क्या है कि जिस विधि से किया जाए अविधि पूर्वक का मतलब हुआ कि लोग भगवान को अलग समझते हैं और देवता को अलग। कोई कहता है मेरा वो देव है, हम जैसे कहते हैं कि तेजोगी नारायण हमारा देवता है। कोई कहता है भेखले माता मायू देवी, कोई कहता है वैष्णो देवी हमारी देवी है, हा? इस प्रकार सिंह ऋषि हमारा देवता है। भगवान यहाँ विशेष जोर देते तरह के कहते हैं कि वो देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं, इसलिए देवताओं को फल देते हैं मैं नहीं। तीनों जगह भगवान के द्वारा माम पद देने का तात्पर्य है कि सब कुछ मैं ही हूँ, सब मेरा ही स्वरूप है। यदि साधक में कामना ना हो और सब में भगवत बुद्धि हो तो वह किसी की भी उपासना करे वह वास्तव में भगवान की ही उपासना होगी। मतलब कामना से हमें दूर रहना है। तात्पर्य है कि यदि निष्काम भाव और भगवत बुद्धि हो जाए तो उसका पूजन अभी पूर्वक नहीं रहेगा। अभी पूर्वक का मतलब ये नहीं की फूल नहीं चढ़ाए की फल नहीं चढ़ाए। अविधि का मतलब है कि भगवान अलग है देवता अलग है। अगर इस रहस्य को हम जान जाए कि प्रत्येक देवता भगवान में ही समाया हुआ है और हम ये माने कि हमारा जो हम देवताओं की पूजा करते हैं ये भगवान की पूजा है तो सचमुच वो पूजन भगवान का हो जाएगा। श्लोक 24, हम ही सर्वज्ञ ज्ञानाना भोक्ता से प्रभु न तो मामी भी जानती तत्व न तश्चंत बनती थे, क्योंकि संपूर्ण युगों का भोक्ता और स्वामी भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं जितने यज्ञ होते हैं उनका भोक्ता उनको ज्ञान करने वाला और उनका मालिक मैं ही हूँ। लेकिन लोग जो करते हैं यज्ञ उनको वो तत्व से नहीं जानते, लेकिन संतों के मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। तत्व सब कुछ अमृष्य, लेकिन भगवान को अलग मान के कहते देवता को दे रहे ना हमारा देवता इसको चढ़ाना ये है वो है। जब मनुष्य अपने को भोगों का भोगता और संग्रह का स्वामी मानकर उनका दास बन जाता है बहुत अच्छी बात है, और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है, भगवान की तो याद ही नहीं रहती, खूब भोगों में लिप्त हो जाता है, बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेता है, तब उसे ये बात याद ही नहीं रहती कि सबके भोगता और स्वामी भगवान है, इस कारण उसका पतन हो जाता है। परंतु जब उसे चेत हो जाता है कि वास्तव में संपूर्ण भोगों संग्रहों के स्वामी भगवान ही, तब वह भगवान के शरणागत हो जाता है, फिर उसका पतन नहीं होता। भगवान ने गीता स्थान में ध्यान कहा है कि जब आपके पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, जब आप मेरी शरण में आ जाओगे। यहाँ भी यही बात आई कि तब वह भगवान के शरणगत हो जाता है तो फिर उसका पता नहीं, फिर वो गिरता नहीं, फिर वो बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता है। श्लोक 25। यहाँ से देव बता देवान के नाम के दृष्टि बता भूतानि यान्ति भूतज्ञा यान्ति मध्यजनोपि माम। स्काम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। अब ये देखिए, जान लीजिए इस बात को बड़े क्लियर, बड़े साफ ढंग से भगवान बताते हैं कि जो देवता का पूजन करेगा वो देवता को प्राप्त होगा, जो पितरों का पूजन करेगा वो पितरों को प्राप्त होगा, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही रूप है, परंतु जो भगवान के सिवाय दूसरी कोई स्पर्धा सत्ता मानता है उसका उदाहरण नहीं आता। कुछ लोग ऐसे होते होंगे कि जो भगवान के सिवाय दूसरी कोई स्वतंत्र सत्ता मानता है, उनको याद ही रहते ये भगवान जो है वो सब व्यापक है, वो सब में है, लेकिन अपनी एक देवता की या अपनी एक अलग से सत्ता बनाते स्वतंत्र, क्या हम किसी के अधीन नहीं, क्या कर लेगा कोई हमारा, तो उसका उद्धार नहीं होता। भगवान कहते वह ऊंचे से ऊंचे लोक में भी चला जाए तो भी उसे लोक संसार में आना ही पड़ता है। जैसे कंस हुआ, रावण हुआ, अपने सत्ता लोग बना ली, भगवान की सत्ता को माना ही नहीं तो उनका उद्धार नहीं हुआ। पत्रम पुषम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति तदहम भक्ति प्रश्नामि चित्तात्मना। जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि यथा साध्य अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तलीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक जीव उपाय भेंट को मैं खा लेता हूँ, अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। कितना ही सुंदर है, बहुत ही, क्या कहते हैं भगवान, भगवान कहते हैं मैं नहीं देखता कि वो बड़ा फल दिया छोटा दिया, लेकिन जो भी वो देता है कौन भक्त पत्र बिल पत्र, उसमें मतलब फूल गुलाब चंपा चमेली फल कदली फल आम आदि जल, कोई भी जल कुएं का जल जो भी उसको मिल जाता है वो प्रेम पूर्वक मेरे चरणों में अर्पित कर देता है, उस मुझ में तलीन हुआ अंतकन वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार भेंट को मैं खा लेता हूँ, खा लेता हूँ। देखो नन्ना जेट भोग लगाते तो भगवान खा लेते थे, आम आदमी भोग लगाते कहाँ थे भगवान, सुबह रख देते हम प्रसाद शाम तो वो ऐसे ही होता, तो साकार रूप में अगर भगवान आएंगे तभी खाएंगे। यहाँ मुझे एक संस्मरण याद आ गया कि सन 1903 से मेरी बैली भक्ति स्वतंत्र रूप से शुरू हुई। स्वतंत्र रूप से मैं इसलिए कहूंगी, इससे पहले कॉलेज में पढ़ते थे, पहले स्कूल में भी कॉलेज में, तो भक्ति के विषय में कभी सोचा ही नहीं, लेकिन माता पिता के साथ या भाई बहनों के साथ जो प्रातः व सायकाल आरती पूजा होती थी वो मेरी भक्ति थी। लेकिन जब मैं अपने कॉलेज में आई तो मुझे अनायास ये अनुभूति हुई कि मुझे अपना मंदिर बनाना चाहिए, भगवान रखने चाहिए, भगवान वाले रूप में रखने चाहिए और फिर उनको भोग लगाना चाहिए, तो भोग लगा कर के खा लेना चाहिए। और ऐसा ही किया मैंने, चांदी का गिलास चांदी की कोली बनवाई, तो भोग लगाना, भोग लगा के बांध देना सबको, खुद भी खा लेना। लेकिन धीरे धीरे मेरे मन में आने लगा क्यों नहीं भगवान आते हैं और खा जाते हैं, सुबह रखते हुए शाम तक रह जाता है, क्यों भगवान खुद स्वयं क्यों नहीं आते, कब आएंगे कब खाएंगे? इसने मुझे शायद दो चार मर्ज वर्ष लग गए, क्यों नहीं आते हैं भगवान, कब आएंगे भगवान? इसके लिए मुझे शायद मेरे आंखों से कई बार आंसू भी निकले होंगे, आएंगे कि आएंगे नहीं, रहता में द्वापर में भगवान आए और भक्तों के दीर्घ प्रसाद को उन्होंने ग्रहण किया। क्या इस कलयुग में भगवान है या आएंगे? तो सोच कर मन में सोच कर रह जाती थी, लेकिन देखिए श्री महाराज जी के रूप में भगवान आए, जो कुछ प्रसाद में रखती वो थोड़ा सा उसमें से ले लेते, और ये मेरा सौभाग्य है भगवान का की कृपा है, भगवत कृपा से उससे पहले जब महाराज जी घर में आते थे तो या तो माता जी के हाथों से पका हुआ भोजन लेते या फिर मेरे हाथों से, और जब मैं कुल्लू से उधर गई खड़ा विहार से वैष्णो देवी तब तो 1976 से 1987 तक श्री महाराज जी थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा भात खा लेते दाल भात, लेकिन वो कहते थे मम्मी ये चम बनाओ आपके हाथों से खाऊंगा, खाते थे किसी और के हाथ से खाने में अच्छा नहीं लगता था शायद, क्या बात थी। तो मुझे ये अनुभूति हुई कि देखो भगवान आते हैं कलियुग में भी आते हैं, और मेरे मन में जो एक तरफ थी एक इच्छा थी भगवान आए तो मेरे द्वारा बनाया गया है प्रसाद को वो ग्रहण करे, भले ही वो मिश्री हो भले ही वो कुछ मीठा हो, लेकिन ले तो श्री महाराज जी भगवत स्वरूप थे, वो उन्होंने आकर के जब भोग लगाते थे तो मेरी प्रसन्नता आप ये क्या कहूँ मैं कि ऐसी प्रसन्नता ऐसी अनुभूति होती थी कि सचमुच भगवान ने आया। ये है क्या कहने का अर्थ कि पत्ते पुष्प कलम तो इन्होंने भक्त पृछति तब हम व्यक्ति के स्नान प्रत्यात्मना मुझ में तीन अंतगण वाले भक्त के द्वारा, लेकिन शर्त क्या है कि अब मुझ में भगवान अपने को कहते हैं, वो अंत करने वाला कौन है? भक्त। जो भक्त अंत मन बुद्धि मन बुद्धि चित्त अहंकार इसको कहते हैं अंतकरण, अंतकरण चतुष्ट है, जो मन भी लगे बुद्धि भी लगे चित्त भी लगे, और जो हमारा अहंकार अहम है मैं वो भी भगवान के चरणों में लग जाए, फिर हम जो कुछ भी भगवान को देंगे भगवान आकर के उसे खा लेते हैं स्वीकार कर लेते हैं। तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर भगवान को भोग लगाना है लगाते हैं हम, तो अपना मन भी भगवान में क्लीन करना चाहिए। श्लोक 27 यत करोषि यद स्नासि यज होषि दुदासि यत पश्यसि कुंतया तत कुरुष्व मुदर्पणम्। हे कुंती पुत्र तू जो कुछ करता है जो कुछ भोजन करता है जो कुछ यज्ञ करता है जो कुछ दान देता है जो कुछ तप करता है वह सब मेरे अर्पण कर दे। इसमें मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ, बहुत पहले की सुनी थी मैंने ये कि एक महिला थी वो सब कुछ भगवान के अर्पित कर लेती थी, बड़ी भक्ति नहीं थी, बूढ़ी भी हो गई थी भक्ति करते करते, तो घर में जो कुछ भी काम करती वो कहती भगवत अर्पण भगवत अर्पण। जब उसने लेपा पोती की गोबर का लेपन किया तो जो थोड़ा सा गोबर हाथ में बच गया बोला श्री कृष्ण अर्पण, ऐसे करके वो गोबर फेंक दिया। और वही उसी शहर में भगवान कृष्ण का मंदिर था, वो जाके गोबर कृष्ण भगवान के मुख पे जा लगा, संतों ने बोला है सुबह भगवान को नहाया, नए वस्त्र पहनाए, ये क्या हुआ, ये कहाँ से गोबर आ गया, कैसे कपड़े बदले, नए कपड़े पहनाए। लगभग ये दूसरे चौथे दिन ऐसा हो ही जाता था कि वो गोबर आके लग जाता था, क्योंकि महिला सब कुछ भगवत अर्पण कर देती थी तो भगवान बाकी तो खा जाते थे या ले लेते थे, पता नहीं चलता था, लेकिन गोबर उसका निशान आ जाता था। तो फिर ढूंढते 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 पता चला कि किस शहर में है, किस शहर में कैसी बुढ़िया माँ है, जो बिल्कुल सब कुछ छाया पिया लिया दिया भगवान के अर्पण कर देती है, तो भगवान उसे गोबर को भी स्वीकार कर देते है। ज्ञान योगी तो संसार के साथ माने हुए सुगंध का त्याग करता है। क्या करता है कि मेरा भाई था पहले, मानता है ना, होता है ना, जन्म लेते हैं मेरा भाई है बंदी माता पिता, तो ज्ञान योगी कहता है उसको छोड़ता है कि अब मैंने भगवान पाना। पर भक्त एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानते ही नहीं, इसलिए ज्ञान योगी पदार्थ तथा क्रिया का त्याग करता है। वो बोलता मैंने कोठी छोड़ दी, मैंने ये काम छोड़ दिया, लेकिन भगवान के लिए वो सब कुछ नहीं है। वो तो जो कुछ उसका पदार्थ है, धन दौलता है, जो कुछ वो काम कर्म करता है, वो सब भगवान के अर्पण कर देता है। जैसे सूर्या भक्त महिला का वर्णन मैंने आपको सुनाया, उनको अपना ना मानकर भगवान का भक्त स्वरूप मानता है। वास्तव में भक्त अपने आप को ही भगवान के समर्पित कर देता है। स्वयं समर्पित होने से उसके द्वारा होने वाली संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक क्रियाएं स्वाभाविक भगवान के समर्पित हो जाती है। ऐसा भक्त तो अपने आप को अर्पित कर देता है ना, फिर जिस उसके द्वारा जो कहा होता है, भले ही वो कुछ भी बनाए, जो कुछ भी काम करे, दूसरों के लिए करे, अपने लिए करे, घर वालों के लिए करे, वो क्या होता है, वो भगवान को समर्पित हो जाता है। मुझे यहाँ अचानक कभी ख्याल आया कि मुझे अचार बनाने में बड़ा आनंद आता है। मैं कभी खाती नहीं अचार, लेकिन बनाने में बहुत ही आनंद आता है, और फिर वो भगवान के को मैं अर्पित कर देती हूँ कि भगवान के लिए बनाया गया है। फिर भगवान ना जाने किन किन भक्तों के मुख से उसे ग्रहण करते हैं, लेकिन जब हम भगवान के लिए बनाते हैं तो भगवान अवश्य उसको ग्रहण कर लेते हैं। जिस भक्त का भगवान के प्रति अर्पण करने का भाव है, उसके द्वारा ना तो निश्चित क्रिया होगी ना निश्चित क्रिया होगी। देखो कितनी सुंदर बात है, जिसने ये सोच लिया कि मेरा प्रत्येक कर्म भगवान के चरणों में समर्पित है, तो वो गलत काम कैसे करेगा, करेगा ही नहीं, निश्चित करेगा ही नहीं। अगर करेगा तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान को दिया हुआ आनंद गुना होकर मिलता है। ये भी बहुत ही मार्के की बात है कि जो हम भगवान को देते हैं, एक फल चढ़ाओ एक सेब, तो ना जाने कितने सेब हमें मिलेंगे। इसके लिए पहले मैंने आपको कहा था, शायद एक अपनी अनुभूति सुनाई थी कि मंदिर में एक महात्मा जी जनवरी के महीने में भारी वर्षा में मंदिर आ गए, वो भीग गए थे। तो मेरे मन में आया कौन अपनी चाल दे दू, तो एक चाल दे दी, भले उनके लिए वो छोटी पड़ी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप जैसे मैंने उड़ाई ओढ़ कर चले गए। लेकिन मैं तब से देखती हूँ कि ना जाने कितने शाले चरण को भर गए, बांट बांट के बांटी। तो वो क्या था कि एक शाल ना जाने वो किस रूप में भगवान आए थे, भगवान शिव थे वो, उन्होंने देखा कि समर्पित भाव है, अपने लिए कुछ नहीं रखना है, तो फिर उसका नाम तो गुणा फल मुझे आज तक मिलता है। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से कर्म बंधन से शुभ विहित और अशुभ निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से तो मुक्त हो जाएगा। जी तो हमें अच्छे का अच्छा मिलता है, और जो निषिद्ध गलत काम करते हैं उसका गलत फल मिलता है। लेकिन जब हम सब कुछ कहते हैं भगवान मैं भी तेरा हूँ, मेरा काम भी तेरे है, मेरे साथ कोई गलती हो गई वो भी तेरी है,
तो फिर उसका फल नहीं मिलेगा, तो फलों से मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने से सब कुछ मुझे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हो तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। कर्म भी शुभ अशुभ होते हैं और फल भी दूसरों के हित के लिए करना शुभ कर्म है, अपने लिए करना शुभ कर्म है। ये भी समझ लीजिए कि जो हम सोचते हैं किसका भला हो जाए, देखो इसके पास ये नहीं है, उसको देखते हैं वो कर्म शुभ कर्म बन जाता है। जब हम अपने लिए एक है बस दस बारह और इकट्ठे कर लेते हैं तो वो कर्म शुभ नहीं बनता, वो बल्कि अशुभ बन जाता है। अनुकूल परिस्थिति में शुभ फल है और प्रतिकूल परिस्थिति में अशुभ फल है। भगवान का फल तो शुभ कर्मों को भगवान को अर्पण करता है, अशुभ कर्म करता नहीं। शुभ अशुभ फल से अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से सुखी दुखी नहीं होता, उसके अनंत जन्मों के संचित शुभ अशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। ये बड़ी बात है कि भगवान के भक्त के जो संचित कर्म है, एक बार पहले भी आपको संचित कर्म के विषय में बताया गया था कि प्रारब्ध और संचित वर्तमान कर्म जो आजकल हम करते हैं, प्रारब्ध जो हमने पिछले जन्म किए थे, संचित जो हमने कई जन्मों से किए हैं और वो इकट्ठे एक स्टोर में रखे हुए भगवान ने, और वो हमें समय समय पर प्रारब्ध के साथ थोड़े थोड़े जोड़ देते हैं। जैसे किसी ने एक भंडार रखा है, वहाँ चावल इकट्ठे कर लिए कई वर्षों से पड़े हुए हैं और फिर वो नए चावल लाता है और पका के खाता है, लेकिन कभी कभी वो उसमें से निकाल लेता है जो भंडार में रखे। इस प्रकार हमें भगवान संचित कर्म भी देते हैं और ये संचित कर्म और आज वर्तमान कर्म शुभ अशुभ सब कब भस्म होते हैं, जब हम भगवान के अंतरंग भक्त बन जाते हैं। घास के ढेर में जलता वो घास का टुकड़ा फेंकने से सब घास जल जाता है। भगवान के अर्पण करने से संसार का संबंध नहीं रहता, प्रकृत केवल भगवान का संबंध रह जाता है जो कि स्वतः पहले से ही है। मैं आपको श्रीमती सोमलता जी का संस्मरण सुनाने जा रही हूँ। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रथम प्रणाम। ये घटना 1992 की है। मैं 2 समय माँ को याद कर धूप और ज्योति करती, कुछ दिन मैंने ओम भुलाए नमन का पाठ किया, मैं प्रार्थना करती जी माँ मुझे कहीं ऐसा प्रकार माँ से मिला जाए जहाँ मैं बात कर सकूं और मेरी माँ मुझसे बात करे। जिसकी संस्था का मुझे ज्ञान नहीं था, यहाँ तक की कुल्लू की होने पर भी ये मालूम नहीं था कि दसवीं मंदिर में गीता स्वरूप गीता माँ जी भी रहती है। इंजीनियर जीवन से रवि का मंदिर में आना जाना था, उन्हीं की कार्यालय में कार्य रखती, परंतु मेरा कल हमारा अलग होने से हमारा उपयोग मेल जोल नहीं था। मेरा दिन और मैं लंच टाइम एक ही कमरे में लंच करती तो हीरा जी कभी कभी मंदिर की चर्चा करती तो सुनने में पति आ जाता। पति माँ के मुझसे प्रेरणा दी तो अश्विन को हीरा जी मंदिर में माइन का पाठ रखा। हीरा जी ने मुझसे कहा कि मैंने महादेवी तीर्थ में माइन का पाठ रखा है, आपको जरूर आना है। मैंने माइन पाठ में हिस्सा लिया लेकिन श्री माँ जी से परिचय नहीं हो सका। अगले दिन कार्यालय से आई तो हीरा जी के साथ माइन पाठ में बैठे हैं। रात्रि पाठ में भी बहुत आनंद आया। इसके बाद मैंने दुर्गति नाशन दुर्गे जाजा काव्य नाशन काली जाजा का खंड पाठ हुआ। इस पाठ में मुझे रात्रि में भाग दिया। जब ये पाठ चल रहा तो लगभग 2:30 या 3 का समय था। मेरे मन में तीव्र इच्छा हुई कि मुझे श्री माँ की चरण वंदना करनी थी और साथ ही साथ ये भी सोच रही थी कि वे तो अपने कक्ष में विश्राम कर रही होंगी तथा वह सुबह ही उनके दर्शन होंगे, लेकिन रहती है कि सच्ची पुकार सुनकर भगवान स्वयं आ जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पाठ चल रहा था, कमरा भरा हुआ था। इतने में श्री माँ अंदर के मूर्ति भवन में आई, बिजली का स्विच ऑन ऑफ किया। मेरी व्यक्तता का मेरी माँ को पता चल गया था। मैंने पास करते करते उनके चल छुए, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा। ये सब ऐसे पास बैठे हुए को भी पता नहीं चला और उसमें मुझे जो आनंद की अनुभूति हुई उसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकती। ये मेरा श्री माँ के चरणों में अंतर मन से प्रथम प्रणाम था, जिसे मेरी माँ ने अपना स्नेही हाथ मेरे सिर पर रखकर स्वीकार किया। नहीं जुलाई में से पहले को गुरु पूजा का शुभ दिन था, सुबह से शक्ति मंदिर परमात्मा से माए नमा का खंड पाठ चल रहा था। किसी ने मेरा आध्यात्मिक पवित्र जन्म हुआ और श्री माँ ने अपने चरणों में शरण दी। उसमें सब मैं स्वामी जी के बारे में सोचा करते थे, मुझे व्यक्त हो जाती थी। मैंने स्वामी जी को नहीं देखा, लेकिन सुबह जब मैं पूजा में बैठी थी तो यही विचार फिर आया। इतने में स्वामी जी का चेहरा दिखाई दिया, किसी चेहरे में कभी माता जी का तो कभी स्वामी जी का चेहरा दिखाई दिया। फिर आवाज आई, ये इसी मुँह से बोलता हूँ और इसी मुँह से खाता हूँ। तो मुझे समझ में आया कि स्वामी जी और माँ जी एक ही है। श्री माँ जी के साथ कई यात्राएं करने का अवसर प्राप्त हुआ। कलकत्ता यात्रा की 2008 में श्री माँ जी के साथ स्थानीय यात्रा की। आज उनके साथ आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। स्वामी शेखरदास इज द हेड ऑफ शारदा माँ सेवा संघ। So, Natasha, you can do the same. You are not ready.